جزاك الله خير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو یہ ہماری تربیتی کلاس بھی کہلاتی ہے، اور اس کے اندر ہمارے دو ٹاپکس چل رہے ہوتے ہیں. پیر کے دن ہم معارف القرآن سے درس قرآن کر رہے ہوتے ہیں اس تربیتی کلاس میں، اور بدھ کے اندر جو تربیتی کلاس ہوتی ہے تو اس میں مثالی عورت کی کتاب میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آج سورت المرسلات کی تفسیر جو ہم پڑھ رہے تھے بعد قرآن جلد نمبر 8 سے، تو اس کو ہم آگے چلاتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے معارف و مسائل پڑھنے شروع کر لیے تھے، پھر وہاں سے ایک ہی پیراگراف میرے خیال میں ہوا تھا، تو اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ شروع سے. معارف و مسائل فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منیٰ کے ایک غار میں تھے. اچانک سورہ مرسلات نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھتے جاتے تھے، اور میں آپ کے مبارک منہ سے اس کو سنتا جاتا تھا، سنتا اور یاد کرتا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو وحی کا نزول جب ہوتا تھا تو اس وقت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی. جیسا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلاس کے اندر جو ابھی پچھلے ہی یعنی ہفتے کے دن ہوئی ہے، تو اس میں اس کو کافی ہم نے بتایا تھا. بچوں کی کلاس ہے لیکن اس میں بڑے بھی شامل ہوتے ہیں، تو اس میں بتایا تھا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک کبھی تو ایک ایک بز کی، ایک وائبریشن کی سی آواز آتی تھی. بہت یعنی اس طرح کے نا، سننے والے کو جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوتا تھا، وہی نازل ہوتے ہوئے کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی تھی سوائے اس بزنگ کے آواز کے. اور نبی علیہ السلام السلام کو بھی اسی طریقے سے محسوس ہوتا تھا جیسے کہ گھنٹی بج رہی ہے یا بز ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدید جو ہے وہ مشکل کیفیت آ جاتی تھی. حتیٰ کہ ایون اگر شدید سردی کا موسم ہو تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو پسینہ آ جاتا تھا، اور پیشانی مبارک کے اوپر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے. پھر جب یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے الفاظ کو پھر تلاوت کر کے صحابہ کرام اگر وہاں موجود ہوتے تھے تو ان کو سناتے تھے، یا پھر بعد میں صحابہ کرام کو سناتے تھے. تو صحابہ کرام نا وٹنس کر رہے ہوتے تھے اس والی کیفیت کو، اور اتنا زیادہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے صحابہ کرام کو پتا تھا کہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس موقع پر بھی اسی طریقے سے ہوا ہوگا. اس کی زیادہ تفصیل تو یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن وہ سورہ نور کی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی براءت کا موقع تھا تو اس پر جو آیات نازل ہونے کا واقعہ تھا، تو وہ صاحب وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ دیکھ رہی تھیں. تو انہوں نے بیان کیا اس کو کہ ایسے ایسے ہوا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھتے تھے تو صحابہ جو وہاں موجود ہوتے تھے تو پھر وہ سن کر کے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین یادداشتیں عطا فرمائی تھیں، تو جو قرآن کی آیات سنتے تھے تو ان کو پھر یاد کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنے پاس کہیں نہ کہیں لکھ بھی لیا کرتے تھے. کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جانور کی کھال को टैन करके, और जो उस तरह की एक बाकायदा एक जैसे पार्चमेंट टाइप का बन जाता है उसके ऊपर फिर लिख लिया करते थे। कोई जो है वो पत्थर की चट्टान के ऊपर लिख रहे होते थे, कोई किसी हड्डी के ऊपर, जानवर की जो जो वो हिप बोन होती है, फ्लैट सी होती है, तो उसके ऊपर जो है वो लिखा करते थे। कहीं ना कहीं जो है ना वो सहाबा कराम लिख लिया करते थे। अच्छा, आपका हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अजम फरमाते हैं कि आपका दहन मुबारक यानी आपका जो थूक था इस सूरत की हलावत से रतब शादाब हो रहा था। यानी तिलावत के वक्त होता है ना कि मुंह से कभी कभी जो है वो थूक के भी आसार नजर आ रहे होते हैं, तो ऐसे नूरानी एक कैसे मंजर था वो कि अचानक एक सांप ने हम पर हमला कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल का हुक्म दिया, यानी हमें कहा कि इसको मार दो। तो हम उसकी तरफ झपटे, वो निकल भागा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस तरह तुम उसके शर से महफूज रहे वो भी तुम्हारे शर से महफूज हो गया। यानी मैंने तुम्हें हुक्म तो दिया था इसको मारने का, लेकिन तुमने अपनी कोशिश कर ली मेरे हुक्म पे अमल करने की, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी तो तुम मेरे हुक्म पर अमल कर नहीं सके। कोशिश तुमने करी, तुम्हें उसका सवाब मिल गया, लेकिन नतायज जो हैं वो अल्लाह के हाथ में हैं, तुम नतीजा हासिल ना कर सके, यानी तुम उसको मार नहीं सके। ठीक है। अच्छा, सांप को मारने के बारे में हदीसें मौजूद हैं कि नबी अलैहि सलाम ने किसी के घर के अंदर अगर सांप उसको नजर आ जाए तो फरमाया कि तुम उसको 3 मरतबा उसको पहले यानी ये क्या कहते हैं अल्टीमेटम दो, या उसको जो है वो कहो कि अगर कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम जिन हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर वो इसके बावजूद ना जाए, 3 मरतबा डराने के बावजूद ना जाए तो फिर तुम उसको मार दो। ठीक है, तो ये भी एक हदीस मौजूद है सांप को मारने के बारे में। और क्या कहते हैं छिपकली को मारने के बारे में भी हदीस मौजूद है कि उम्मे शरीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया था। ठीक है, तो और भी दूसरी हदीसें भी मौजूद हैं क्या कहते हैं उसको बिच्छू को मारने के लिए और सांप को मारने के लिए। ठीक है, तो फुकहा ने ना फिर इन सब हदीसों का जो एक कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, वो ये यानी फुकहा का ही काम होता है ना कि कुरान मजीद के आयात को स्टडी करें और फिर हदीसों को स्टडी करें और फिर एक शरी हुक्म जो है वो अवाम नास को बताएं कि भाई लोग पूछते हैं कि अच्छा भाई सांप अगर हमें नजर आए तो हम क्या क्या करें उसको, तो क्या हमें उसको मारना वाजिब है कि बस सांप को तो छोड़ना ही नहीं है, जहां सांप नजर आए उसको मार दो, या सांप को मारना जो है वो मना है कि भाई आप नहीं मार सकते सांप को, ठीक है हराम है सांप को मारना, या सांप को मारना जायज है कि अगर आप मारें तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा और अगर ना मारें तो भी जो है वो गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फुकहा ने फिर इसके ऊपर ये फरमाया कि इन हदीसों से बेसिकली हमें जो जो फायदा हासिल होता है ना वो ये है कि सांप और बिच्छू को मार देना जायज है। ठीक है, मुबाह है, मुबाह का मतलब जायज। ठीक है, लेकिन वाजिब नहीं है, ऐसा नहीं है कि जहां आपको बिच्छू नजर आए आपको मारना जरूरी है, अगर नहीं मारेंगे तो आपको गुनाह होगा, सांप नजर आए तो मारें वरना नहीं मारेंगे तो गुनाह होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर मुख्तलिफ जो हदीसें होती हैं ना फिर उन सब के फिर अलग अलग मफहूम होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया है सांप को मारने का ना सहाबा को, तो भाई यहाँ पर हुक्म फरमाया तो इस हुक्म फरमाने से सांप को मारना वाजिब क्यों नहीं हो गया, जहां सांप नजर आए उसको मारो, तो उसकी फिर ये वजह बताई जाएगी कि भाई ये एक मखसूस वक्त था, यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने इस सांप को मारने का हुक्म दिया था, उसकी कोई खास वजह होगी, या तो आप को नजर आ रहा होगा क्योंकि आप तो अल्लाह के नबी थे ना, तो हो सकता है आपसे को देख करके पता चल गया हो कि ये तो कोई शैतान है। ठीक है, सांप की शक्ल में आया हुआ है, क्योंकि सांप एक ऐसी शक्ल है जो कि शयातीन जो हैं यानी जिन, वो सांप की शक्ल जो है वो ज्यादा इख्तियार करके इंसानों के सामने आते हैं। ठीक है, ये बात बहुत किताबों के अंदर मनकूल है, शायद से भी सुनी भी है कि जिन जब इंसानों की बस्ती में आते हैं या इंसानों के, तो वो उमूमी तौर पर सांप का रुख धार करके आते हैं। ठीक है, हो सकता है नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात देखी हो, इस वजह से जो है वो सहाबा किराम को हुक्म दिया, या ये कि वो ऐसी सेटिंग में थे कि जहां पर ये सांप जो है वो इन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था, वो उसने उसने हमला किया था, नुकसान ही पहुंचाने के लिए हमला किया था ना उसने, डसने के लिए, काटने के लिए, तो इस सिचुएशन की वजह से उसको मारना जो है वो जरूरी हो गया था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको हुक्म फरमाया। लेकिन हर जगह सांप जो है वो आपके ऊपर हमला तो नहीं कर रहा होता ना, हर जगह सांप जो है वो आपको पता भी नहीं होता कि वो जिन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से फुकहा ने फिर कंक्लूजन ये अवामुन नास को बताया कि भाई सांप को मारना जो है वो मुबाह है, जायज है, लेकिन वाजिब नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं पता नहीं आपने कहाँ से इसको जोड़ा है, बहरहाल आगे चलें। इस सूरत में हक ताला ने चंद चीजों की कस्में खाकर कयामत की यकीनी तौर पर आने का जिक्र फरमाया है। इन चीजों का नाम कुरान में बयान नहीं किया गया, अलबत्ता उनकी इस जगह पांच सिफतें बयान फरमाई गई। ठीक है, अल्लाह ताला कस्में खाते हैं अपनी मखलूक की, और उसके बाद फिर जवाब कसम के तौर पर कोई अहम बात बयान फरमाते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में भी अल्लाह ताला ने यही तरीका इस्तेमाल फरमाया है कि अपनी मखलूकात की कस्में खाई हैं, लेकिन उन मखलूकात का यहाँ पर नाम नहीं लिया, वरना दूसरी जगहों पर बाकायदा अल्लाह ताला नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे वशम्स वदुहाहा, ठीक है, वलकमर इज़ा तलाहा, तो शम्स जो है वो मखलूक का नाम है अल्लाह ताला की, सूरज और कमर ये भी मखलूक का नाम है। ठीक है, यहाँ पर सिफतें बयान की जा रही है, क्वालिटी बयान की जा रही है किसी मखलूक की, नाम बयान नहीं किया गया, बयान नहीं किया। ठीक है, तो फरमाते हैं कि मुरसलात, आसिफात, नाशिरात, फारिकात और मुल्कियात, मुल्कियात जिक्र। ठीक है, तो किसी हदीस मरफू में इसकी पूरी तायीन नहीं आई। हदीस मरफू क्या, किस हदीस को कहते हैं कि जिसकी चेन ऑफ नरेशन या जिसकी सनद जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती हो, कि उस हदीस में क्या हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया या मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ये सुना। ठीक है, तो ऐसी जो हदीस होती है उसको हदीस मरफू कहते हैं, और कुछ हदीसें ऐसी भी होती हैं कि जिसमें कि इस तरह से नहीं होता, बल्कि सहाबी जो है वो अपने तौर पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन बात ऐसी होती है कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये बात सहाबी ने यकीनन नबी से ही सुनी होगी, नबी अलैहिस्सलाम से ही सुनी होगी, अगरचे कि उन्होंने कहा नहीं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना या नबी अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई। ठीक है, तो इस तरह से ना हदीस की बहुत सारी किस्में होती हैं, जो लोग फिर इसके अंदर आगे जाते हैं तो वो फिर हदीस की सारी किस्में उसूल हदीस की किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मरफू हदीस कोई ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये किसी सहाबी ने बताया हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुरसलात का ये मतलब है, आसिफात से ये मुराद है, नाशिरात से ये मुराद है। ठीक है, अगर आप सबने फरमा दिया होता तो फिर उलमाए कराम को इसमें गौर व खौज करने की जरूरत नहीं होती कि भाई इसका क्या मतलब है, क्योंकि आप ने मुतय्यन कर दिया, जब आप ने कर दिया तो आप शारे अलैहिस्सलाम हैं, तो शारेह भी हैं और शारे भी हैं। शारे कहते हैं शरीयत बताने वाले कि क्या अल्लाह का हुक्म है, उसको शरीयत कहते हैं। शरीयत क्या है? अल्लाह ताला के हुक्मों का नाम है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया हमें कि अल्लाह का हुक्म क्या है, इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम शारे हैं, ऐन वाला शारे, और कुरान मजीद के शारह हैं। शारह का मतलब तशरीह करने वाले। ठीक है, कि फलाने लफ्ज का क्या मतलब है कुरान मजीद में, और फलाने आयत का क्या मतलब है कुरान मजीद में, और फलाने वाकये का क्या मतलब है कुरान मजीद में। ठीक है, तो भाई नबी अलैहिस्सलाम ने हर चीज की तशरीह नहीं बताई, अल्लाह की ये हिकमत है कि हर चीज नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने नहीं हमें बतलाई। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ना फिर कुछ ओपन चीजें छोड़ी हैं कि जिनको फिर उम्मत के उलमाए कराम जो हैं वो अल्लाह के दिए हुए इल्म को इस्तेमाल करते हुए फिर उम्मत को वो चीजें बताते हैं। ठीक है। तो ये मामला भी ऐसे ही है कि जिसके अंदर नबी अलैहि सलाम ने तायीन नहीं फरमाई कि इन सिफात के मौसूफात क्या हैं, इसलिए सहाबा व ताबईन की तफसीरें इस मामले में मुख्तलिफ हो गई। ठीक है, अगर नबी अलैहि सलाम बता देते तो फिर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता था। जैसे आज देखे ना, अगर कोई बड़े शेख होते हैं और बड़े शेख के साथ जो है वो उनके फिर खुलफा होते हैं या उनके मुरीद होते हैं या उनके शागिर्द होते हैं, ठीक है ना, तो वो सब के सब जो है वो शेख की बात को हतमी समझते हैं। ठीक है कि भाई अगर शेख साहब ने ये बात कह दी है ना, तो बस इसमें तो फिर अब कोई दो राय हो ही नहीं सकती, उन्होंने एक्सप्लिसिटली बता दिया। लेकिन अगर शेख साहब ने किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, तो अब जो उनके करीबी लोग होते हैं वो फिर खुद अपनी जो जो अकल होती है, जिसके अंदर इल्म भी होता है, शेख की बताई हुई बातों का इल्म होता है उनके पास, और उन्होंने उसके अलावा जो है वो काफी इल्म हासिल किया होता है, तो अब जो है ना वो फिर अपने इस इल्म की रोशनी में बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से फिर उन लोगों में फिर इल्मी इख्तलाफ होना ऐन मुमकिन है कि कोई जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचे, कोई दूसरा जो है वो किसी और नतीजे पर पहुंचे। ठीक है, तो इसको इल्मी इख्तलाफ कहते हैं, और ये इल्मी इख्तलाफ जो है वो अल्लाह ताला ने खुद इल्मी इख्तलाफ जो है वो उम्मत के अंदर रखा। अगर नबी अलैहिस्सलाम हर चीज खुद बता देते तो कोई इल्मी इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम से हर चीज हमें नहीं बतलाई, तो इल्मी इख्तलाफ पैदा फरमाया, बाकायदा पैदा फरमाया अल्लाह ताला ने। क्यों पैदा फरमाया भाई? इसलिए क्योंकि इससे फिर हमारी आजमाइश होती है, हमारा इम्तिहान होता है कि अब देखेंगे कि इस इल्मी इख्तलाफ को तुम लोग खुश इखलाकी के साथ हैंडल करते हो आपस में, या तुम इसको जो है ना वो बद इखलाकी के साथ हैंडल करते हो। ठीक है, इख्तलाफ हो गया, अब इख्तलाफ के कुछ हदूद होते हैं, कुछ कवायद होते हैं, कुछ उसके तौर तरीके होते हैं, अच्छे तौर तरीके। हाँ भाई, मैं आपसे इस मामले में इल्मी इख्तलाफ करता हूँ, ठीक है ना, मेरे अलग दलायल हैं और मैंने अलग तहकीक करी हुई है इस मामले के ऊपर, मैं इस नतीजे पर पहुंचाऊँ, और आप जो है वो आपने भी तहकीक करी हुई है, आप जो है वो किसी दूसरे नतीजे पर पहुंचे, ठीक है, आप भी आलिम हैं तो आपको हक है कि भाई आप अपनी ये राय रखते हैं इस मामले में, और मैंने अपनी तहकीक करी है तो मुझे भी हक है। अब मैं इस बुनियाद पर, इस इख्तलाफ की बुनियाद पर आपको बुरा भला नहीं कहूंगा, आपको मैं गालियां नहीं दूंगा या आपको मैं मारूंगा नहीं, ठीक है, तो ये इख्तलाफ को हैंडल करने का अच्छा तरीका है। ठीक है ना, और इस तरीके से फिर अल्लाह ताला दोनों से राजी, दोनों से खुश और दोनों को सवाब दे देते हैं। लेकिन अगर जो है वो इसकी बुनियाद पर दिलों में नफरतें आ जाएं और जो है वो जुबान से जो है वो गंदी बातें निकालना शुरू कर दें, और हत्ता के कभी कभी हाथापाई की भी नौबत आ जाए इख्तलाफ के ऊपर, ठीक है ना, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो इस पे नाराज होते हैं और इसके ऊपर जो है वो गुनाह देते हैं। ठीक है, तो इस दुनिया के अंदर तो हमें इस आजमाइश के लिए भेजा गया ना, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे सिचुएशंस खुद क्रिएट करते हैं ताकि हमारी आजमाइश हो सके। लेकिन आप जब इम्तिहानी पर्चा देती हैं तो टीचर जो है वो इम्तिहानी पर्चे के अंदर क्या खुद जवाब बता देती है कि भाई इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, तो फिर आपने क्या छापा मार करके आ जाना होता है, फिर आपका इम्तिहान क्या हुआ? इम्तिहान तो नहीं हुआ ना। तो टीचर जो है वो कुछ चीजों को अननोन छोड़ देते हैं ना इम्तिहानी पर्चे के अंदर, ताकि बच्चे का इम्तिहान हो कि हाँ भाई वो उसको कैसे हैंडल करता है, कैसे जवाब देता है। अच्छा जवाब देगा तो उसको जो है वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जो है वो नहीं जवाब देगा या गलत जवाब देगा तो उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे, उसको फेल कर दिया जाएगा। हाँ, अगर पहले से टीचर ने सारी चीजें बता दी तो फिर जो है इम्तिहान कैसे होगा? तो ये दुनिया तो दारुल इम्तिहान है, इस वजह से अल्लाह ताला ने ये मामलात पैदा किए हैं। अच्छा, आगे फरमाते हैं हजरत मुफ्ती शकील रहमतुल्लाह अलैह कि बाज हजरात ने इन पांचों सिफात का मौसूफ फरिश्तों को करार दिया। ठीक है, यानी उलमा ने, जो तफसीर के उलमा हैं, उन्होंने जब इस पर तहकीक करी तो कुछ की ये समझ में आई बात, तहकीक का ये नतीजा निकला कि भाई ये सब फरिश्तों की सिफतें, और ये कि हो सकता है कि फरिश्तों के मुख्तलिफ जमातें इन मुख्तलिफ सिफात की हामिल हो। ठीक है, क्योंकि फरिश्तों में अल्लाह ताला ने जमातें बनाई हुई है, किसी का काम जो है वो कुछ है, किसी का काम कुछ और है, किसी का काम कुछ और है। बाज हजरात ने इन सिफात का मौसूफ हवाओं को करार दिया है, वो भी मुख्तलिफ अकसाम और नौइयत की होती हैं, ठीक है। विंड्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्तलिफ तरह की विंड्स होती हैं ना, इसीलिए ये सिफात मुख्तलिफा उनमें हो सकती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मुख्तलिफ सिफात की हवाएं होती हैं और उसी तरह से मुख्तलिफ सिफात के जो हैं वो फरिश्ते होते हैं। बाज़ हज़रात ने इनका मौसूफ खुद अंबिया व रसुल को करार दिया है कि यहाँ पर ये सिफतें नबियों की हैं। इबन जरीर तिबरी ने इसीलिए इस मामले में तवक्कुफ और सुकूत को असलम करार दिया कि इहतमाल दोनों हैं, हम अपनी तरफ से किसी को मुतय्यन नहीं करते, ठीक है ना। ठीक है, मुफस्सिरीन का काम है कि भाई जो आम मुसलमान हैं उनको बात समझाना, इल्म पहुंचाना, है ना। मुफस्सिरीन ने भी तो इल्म हासिल किया है ना, उनको भी तो ख्वाब में सोते सोते तो इल्म नहीं आ गया था, उन्होंने भी पढ़ करके इल्म हासिल करके जो है वो कोई नतीजा खर्च किया, तो अब वो अवाम उन्नास को ये इल्म आगे पहुंचाने के मुकल्लफ हैं, जिम्मेदार है कि वो अवाम उन्नास को भी ये इल्म पहुंचाए। हो सकता है अवाम उन्नास में से भी कोई आलिम बन जाए इस इल्म को संजीदगी से पढ़ करके, तफसील हासिल करके, ठीक है। लेकिन मुतय्यन नहीं करेंगे कि 100% यही मतलब है इसका, क्योंकि हमें नहीं पता कि 100% यह मतलब है। अच्छा, और इसमें शुबो नहीं कि जो पांच सिफात इस जगह जिक्र की गई हैं उनमें से बास तो मलाइकतुल्लाह पर ज्यादा चिस्पा और उनके मुनासिब हैं, उनको रियाह की सिफत बनाए यानी हवा की सिफत बनाए तो खींचतान और तावील करना पड़ती है, ठीक है। तावील करने का आम मफहूम क्या है कि खींचतान करके ना किसी चीज की आप कोई एक्सप्लेनेशन, कोई उसकी जो है वो यानी समझ हासिल यानी बयान करें, समझ बयान करें, लेकिन जरा खींचतान करके आपको समझ बयान करनी हो। क्यों? इसलिए कि अगर क्लियर उसकी समझ मौजूद है तो फिर तावील करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कोई बात अगर बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल क्लियर हो तो फिर तो भाई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है ना, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो वहीं पर होती है ना कि जहां पर कोई बात क्लियर नहीं हो, तो जब कोई बात क्लियर नहीं होती है फिर उसकी एक्सप्लेनेशन की जा रही होती है ना, तो फिर एक्सप्लेनेशन में खींचतान की जरूरत कभी पड़ जाती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि पड़े, लेकिन कभी खींचतान की भी जरूरत पड़ जाती है तो उसको तावील करना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मलाइकतुल्लाह, कुछ उलमा ने कहा ना कि मलाइकतुल्लाह यानी अल्लाह के फरिश्तों पर ये ज्यादा मुनासिब मालूम होती हैं, तो अगर हम इसको रियाह की सिफत करार दें ना तो फिर हमें खींचतान करनी पड़ेगी अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर, अपनी तावील के अंदर। और बाज़ सिफात ऐसी हैं जो रियाह यानी हवाओं पर ज्यादा चिस्पा और वाजे हैं, उनको फरिश्तों की सिफत बताएं या बनाएं तो तावील के बगैर नहीं बनती, ठीक है। इसलिए इस मुकाम में बेहतर फैसला इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का मालूम होता है। उन्होंने फरमाया कि शुरू की तीन सिफात हवाओं की सिफतें हैं, इन तीन में रियाह और हवाओं की कस्म हो गई। पहली तीन वाली जो है ना ये हवाओं की कस्म है, और बाकी आखिरी दो सिफतें ये फरिश्तों की सिफात हैं, तो ये फरिश्तों की कस्म हो गई, ठीक है। क्या थी ऊपर लिखा हुआ ना, मुरसलात, आसफात, नाशरात, फारिकात, मुल्कियात और जिक्र, ये पांच सिफात हैं। इनमें मुरसलात, आसफात और नाशरात जो है ना ये तो हवाओं की सिफतें, ठीक है। तो अब ये तीन हवाओं की किस्में हो गई, मुरसलात वाली हवाएं, आसफात वाली हवाएं, नाशरात वाली हवाएं, और फारिकात और मुल्कियात और जिक्र जो है ना ये फरिश्तों की सिफतें। तो ये अब दो किस्म के फरिश्ते हो गए, मुल्कियात वाले, सॉरी सॉरी फारिकात वाले फरिश्ते और मुल्कियात और जिक्र वाले फरिश्ते। तो अल्लाह ताला ने तीन जो है वो हवाओं की कस्में खाई, कसम सॉरी कसम नहीं कसम, और बाकी दो जो है वो फरिश्तों की कसम खाई, ठीक है। रियाह की सिफत करार देने में आखिरी दो सिफतों में जो तावील की जाती है वो आप खुलासे तफसीर में देख चुके हैं, क्योंकि उसमें उसी को इख्तियार करके तफसीर की गई। अच्छा, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी तफसीर लिखी ना बयानुल कुरान, जो कि खुलासे तफसीर में हमने पढ़ ली थी, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना वो पांचों को हवाओं की सिफतें करार दिया। भाई उनकी अपनी तहकीक थी, उनकी अपनी जो है वो यानी इसकी समझने इज्तिहाद था इस मामले पर, ठीक है। तो उन्होंने पांचों को हवा की सिफत करार दिया, लेकिन आखिरी दो में उनको भी तावील करनी पड़ेगी, ठीक है, के जो क्या कहते हैं फारिकात, ठीक है, तो उसको उन्होंने हवा की एक सिफत करार दिया। तो क्या लिखा उन्होंने कि हवाओं की जो बादलों को मुतफर्रक मुतफर्रक कर देती हैं, ठीक है, तो फारिकात से मुराद ये है कि बादलों को क्या कहते हैं तोड़ देती हैं वो हवाएं, तो वो हवाएं जो है ना वो फारिकात कहलाती हैं, ठीक है। अब ये खींचतान करके एक तावील बनी, क्यों, इसलिए कि बादलों को जो मुतफर्रक करती है ना, तो ये भी तो हो सकता है कि चूंकि बादलों के अंदर से पानी कम हो गया तो इस वजह से बादल जो है वो टूट गए। पहले बादल जो है उनके अंदर पानी भरा हुआ था तो वो एक जिस्म नजर आते थे, ठीक है, लेकिन जब बारिश हो गई, खूब बरस गए वो, अब वो पानी खत्म हो गया उनके अंदर से, बहुत थोड़ा सा पानी रह गया, तो अब उनके अंदर वो एक जिस्म वाली सिफत नहीं रही, बल्कि वो इस वजह से टूट फूट गए। तो हवाओं ने उनको नहीं तोड़ा फोड़ा, बल्कि वो खुद टूट फूट गए पानी के खत्म होने की वजह से, ठीक है। लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको चूंकि यानी इस फारिकात के लफ्ज को बादलों की सिफत के तौर पर बयान, सॉरी, हवाओं की सिफत के तौर पर बयान किया है, तो इस वजह से फिर उनको ये तावील करनी पड़ी कि उन हवाओं की जो बादलों को मुतफर्रक कर देती हैं जैसे बारिश के बाद होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मुल्कियात जिक्र था, तो जिक्र को दिल में डालने वाली, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का ख्याल दिल में डालने वाली, ठीक है ना। तो अब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हवाओं को कहा कि भाई हवाएं जो है ना वो अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का ख्याल जो है वो दिलों में डाल देती हैं। तो भाई हवा कैसे डालती है दिल में अल्लाह का ख्याल, ठीक है, तो अब उनको इसकी तावील करनी करनी पड़ी। तो उन्होंने फरमाया कि फिर उन हवाओं की जो दिल में अल्लाह की याद यानी तौबा का या डराने का इल्का करती हैं, यानी ये हवाएं मस्कूरा, ये जो हवाएं जिनका जिक्र यहाँ पर है ना, हक तआला की कुदरत कामिला पर दलालत की वजह से खालिक कायनात की तरफ मुतवज्जे होने का सबब हो जाती है, ठीक है, मुतवज्जे होने का सबब बन जाती हैं, इस वजह से अल्लाह का जिक्र जो है वो दिल में डालने वाले, ठीक है। और वो तवज्जो दो तौर से होती है, एक खौफ से, जबकि इन हवाओं से आसार खौफ के नुमाया हो, और दूसरा तौबा व माजरत से, और ये खौफ और रजा की दोनों सूरतों में हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं तावील करना। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर तावील करके जो हवा की सिफत है ना वो बयान करी, फारिकात और मुनफियात, ठीक है। लेकिन ये तावील करना जो है ना, ये हर कसो नाकस ये तावील नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जितना इल्म उन मुफस्सिर कुरान के पास है वो हर इंसान के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से जो है ना वो कुरान मजीद की किसी आयत की तावील नहीं कर सकते। ये तावील भी करना उसी वक्त जायज होगा जब आपके पास इसका मतलूबा इल्म मौजूद है, आपके पास ऐसी सनद मौजूद है, आपके पास इतनी गहराई मौजूद है। कुरान मजीद की तफसीर करना जो है वो बहुत सारी उसके लिए उलूम की जरूरत होती है, जिसके अंदर अरबी उलूम है ना, ये बहुत यानी बुनियादी हैसियत रखते हैं कि अरबी जुबान का बहुत गहरा इल्म मौजूद हो, ठीक है ना। अब हमारे पास तो अरबी जुबान का यानी बुनियादी इल्म भी मौजूद नहीं होता। अब हम तर्जुमा कहीं पे पढ़ें, उर्दू में किसी का कोई तर्जुमा पढ़ लिया या अंग्रेजी में कोई तर्जुमा पढ़ लिया, और हम जो है वो उसकी बुनियाद पर ना तावील करना शुरू कर दें अपनी तरफ से, तो ये गुमराही होगी, और इसके ऊपर जो है ना फिर अल्लाह ताला का अजाब होगा, सजा मिलेगी। तुमने बगैर इल्म के जो है वो कैसे तावील करनी शुरू कर दी मेरे कुरान के अंदर, ठीक है ना। इसके लिए तो एक रिक्वेस्ट, प्री रिक्वेस्ट इल्म की जरूरत थी, जो कि तुम्हारे पास था ही नहीं, मैंने तुम्हें दिया ही नहीं ये वाला इल्म, तो तुमने अपनी जहालत के साथ जो है वो तावील करनी शुरू कर दी। चलो जी, अब चलो मुजरिम के कटहरे के अंदर खड़े हो, अब तुम्हें सजा मिलेगी इसकी, ठीक है ना। तो हम आपको तावील जो समझा रहे हैं ना, उसकी ये वजह नहीं है कि अब आप जो है वो तावील करना शुरू हो जाए, या हम जो है, हम तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते हैं कि हम कोई तावील कर सके अपनी तरफ से, हालांकि यहाँ पर पढ़ाने वाले जो है वो हम हैं और आप जो है वो पढ़ने वाली हैं, लेकिन हम अपने आप को तावील करने के बिल्कुल भी लायक नहीं समझते, तो फिर जो सुन रहे हैं वो कहाँ से तावील करने के लायक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन तावील का जो लफ्ज है इसको इस मिसाल के जरिए से हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो तावीलात करी हैं ये हमारे लिए समझना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे बुजुर्गों ने क्या तावीलात करी, और इसको अप्रिशिएट करना और इसकी अहमियत को मानना कि हाँ हमारे बुजुर्गों ने जो तावीलात करी है ना ये इंतहाई अहम और जरूरी तावीलात थी। ठीक है, अच्छा बहरहाल तो फरमाते हैं कि इसी तरह जिन हजरात ने इन सब सिफात को सिफात मलाइका करार दिया है उनको पहली तीन सिफात यानी मुरसलात आसिफात नाशिरात को फरिश्तों पर चिस्पा करने के लिए इसी तरह की तावीलात से काम लेना पड़ा है। ठीक है, इब्ने कसीर के इख्तियार के मुताबिक मानी इन आयतों के ये हो गए कि कसम है उन हवाओं की के जो भेजी जाती है। ठीक है, तो अब इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने किस तफसीर को इख्तियार किया कि पहली तीन किस्में पहली तीन सिफात हवाओं की सिफात हैं और आखिरी दो सिफात फरिश्तों की सिफात। ठीक है, तो अब इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने जो ये इख्तियार किया ना ये तफसीर इख्तियार की ना तो उसके मुताबिक इन आयतों के क्या मानी हो गए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कसम है उन हवाओं की जो भेजी जाती है, वल मुरसलाते उर्फा, कसम है उन हवाओं की जो भेजी जाती हैं। उर्फन यहाँ का जो लफ्ज है यहाँ उर्फन का मफहूम वो भी हो सकता है जो खुलासे तफसीर में ऊपर मजकूर हुआ यानी जूदो सखा और नफा रसानी। जूदो सखा का मतलब क्या होता है, सखावत का इजहार करना, बहुत जो है ना वो फायदे बांटना, इसको जूदो सखा कहते हैं, और नफा रसानी का मतलब नफा पहुंचाना, एक ही बात है, हम मानी अल्फाज हैं दोनों। तो जो हवाएं बारिश लेकर आती हैं उनकी जूदो सखा और नफा रसानी जाहिर है यानी एविडेंट है कि भाई बारिश लेके आती है, बारिश से जो है वो गर्मी जो है वो एकदम से कम हो जाती है और जो है वो उससे जमीन के अंदर सब्जा उगना शुरू हो जाता है, फसलें जो है वो तैयार होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और नहरों के अंदर पानी भर जाता है, प्यास लोगों की और जानदारों की प्यास जो होती है वो बुझ जाती है, तो बारिश की तो फिर नफा रसानी बे इंतहा है, अल्लाह ताला की रहमत करार दिया गया इसी वजह से बारिश को। ठीक है, तो ये फरमा रहे हैं कि ये तो जाहिर है, क्लियर है, एविडेंट है। और दूसरे मानी उर्फन के मुतताबिक यानी पे दर पे के भी आते हैं। उर्फन का एक मानी जूदो सखा और नफा रसानी, और उर्फन का दूसरा मानी क्या होता है अरबी जुबान के अंदर कि कोई चीज जो कि पे दर पे हो रही हो, मुतताबे हो रही हो, ठीक है, यानी मुस्तकरन हो रही हो या आम हो, जब भी कोई चीज जब मुआशरे के अंदर बहुत आम होती है ना तो उसको उस चीज को फिर मारूफ कहा जाता है। हाँ भाई ये बात तो बड़ी मारूफ है, ये तो बड़ी कॉमन है, एवरी वन नोज इट, ठीक है ना, तो उसको मारूफ कहा जाता है। वो मारूफ का लफ्ज कहाँ से निकला, उर्फ से निकला। ठीक है, तो अगर ये मानी लिए जाए तो मुराद वो हवाएं होंगी जो बादल और बारिश को लिए हुए मुसलसल और मुतताबिक चलती हैं। ठीक है, यानी चली जा रही हैं हवाएं, चले जा रही हैं, यानी ये जो हवाओं का सिलसिला होता है जिन 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 इलाकों में जिन जगहों के अंदर ये हवाएं जारी होती हैं, यानी हर जगह ऐसा नहीं होता लेकिन जिन जगहों पे, तो वहां पर तो मुस्तकिल हवाएं चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, जो हत्ता के वहां पे आजकल जो है वो बिजली पैदा करने के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए विंड मिल्स लगा देते हैं, बड़ी बड़ी विंड मिल्स है ना, और इससे फिर वो हवा यानी हवा की के जोर की वजह से बिजली पैदा करती है ये विंड मिल्स। ठीक है ना, जैसे कि सोलर एनर्जी से है ना, सूरज सूरज की शुआएं भी जो है ये भी मुतताबे हैं, है ना, जिन जगहों पे गर्मी पड़ती है और सूरज की तमाजत ज्यादा होती है तो वहां पर सूरज की रोशनी से और सूरज की गर्मी से बिजली पैदा की जा रही होती है, सोलर पैनल्स। अब तो सभी को पता है सोलर पैनल्स क्या होते हैं, जहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है, दरियाओं का पानी, तो वहां पर पानी के जरिए से बिजली पैदा की जा रही होती है। तो हमारे यहाँ मंगला डैम और तरबेला डैम और इंडिया में भी इतने सारे डैम हैं, डैम्स के ऊपर पानी पैदा किया जा रहा था क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। उसी तरह कुछ जगहों पर विंड बहुत ज्यादा होती है, यूरोप के जैसे बहुत से इलाके हैं, पाकिस्तान इंडिया वगैरह के अंदर भी कुछ ऐसे इलाके नॉर्दर्न साइड के ऊपर, ठीक है। तो उर्फन जो है वो उन हवाओं को कहा गया कि जो मुसलसल और मुतताबिर चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गए उर्फन लफ्ज के मफहूम। अच्छा, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वल आसिफात असफा, तो फरमाते हैं कि आसिफात असफुन से मुश्तक है, डिराइव्ड है, जिसके लुगवी मानी हवा के तेज चलने के हैं, और इससे मुराद वो आंधियां और तेज हवाएं हैं जो बाज औकात दुनिया में आया करती है, ठीक है, जिसको के वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हरिकेन्स कहा जाता है या स्टॉर्म्स कहा जाता है, और ईस्टर्न साइड के ऊपर इसको क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं ना, या एक और भी एक लफ्ज है इसके लिए। तो आंधी और तेज हवाएं और भी था, यानी थंडर स्टॉर्म्स और क्या दूसरे अल्फाज भी, तो ये भी हवा की एक सिफत है आसिफात, क्योंकि तेज चलने वाली हवाएं, ये एक मुख्तलिफ किस्म की हवाएं होती हैं जो कि उड़ा के ले जाती हैं चीजों। नाशिरात से मुराद वो हवाएं हैं, वन नाशिरात नशरा, तो नाशिरात से मुराद वो हवाएं हैं जो बारिश खत्म होने के बाद बादल बादल को फाड़ कर मुंतशिर कर देती है, टोर्नेडोज की, ये भी अमरीका वगैरह में बहुत ज्यादा आते हैं, तो फाड़ कर मुंतशिर कर देती है, ठीक है। यानी ये वो नहीं कि बादल, यानी सिर्फ बारिश खत्म हुआ और बादल जो है वो टूट गए, बल्कि ये बादलों को उड़ा करके फिर दूसरी जगहों पे ले जाती है, मुंतशिर कर देती है दूसरी जगहों के ऊपर ले जाती है, ठीक है, अगले मुकाम पे ले जाती है। अच्छा, फारिकात, ये सिफात फरिश्तों की है, क्योंकि इब्न कसीर रहमतुल्लाह की यहाँ पे तफसीर हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह बयान फरमा रहे हैं ना, तो इब्न कसीर ने क्या किया, पहली तीन जो है वो हवाओं की सिफत और बाकी दो जो है फरिश्तों की सिफत। तो अब चौथी वाली सिफत फारिकात, कि ये सिफत फरिश्तों की है जो वही इलाही नाजिल करके हक व बातिल में फर्क वाजह कर देते हैं, फारिक फर्क करने वाला, ठीक है, जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी फारूक फर्क करने वाला, यानी ऐसे जबरदस्त वो थे कि जब वो मुसलमान हुए थे तो हक और बातिल के दरमियान जो है ना वो बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन जो है वो हो गई थी, खड़े होकर के वो क्या क्या किया उन्होंने, सबसे पहले हरम पहुंच गए और काबतुल्लाह के सामने जो है ना तलवार लेकर के खड़े हो गए, मैं मुसलमान हो गया हूँ, किसी को अपनी बीवी को यतीम करना हो, किसी को जो है ना वो अपने बच्चे को यतीम करना हो, बीवी को सॉरी यतीम नहीं, बीवी को जो है वो बेवा करना हो, आ जाओ, मैं तो खुल करके ऐलान कर रहा हूँ कि जी मैं मुसलमान हो गया, और किसी की मजाल नहीं थी कि उनको जाकर के कन्फ्रंट कर सके, ठीक है। तो फारिक कहते हैं फर्क वाजह कर देने वाला, तो यहाँ पे फारिकाते क्या था, वल फारिकाते फर्क। अच्छा, फिर उसके बाद आखिरी सिफत मुल्कियात जिक्रन, ये भी फरिश्तों की सिफत है, और जिक्र से यहाँ पर मुराद कुरान या मुतलक वही है, जो भी वही हो, चाहे वो तिलावत की जाने वाली वही जिसको कुरान कहते हैं, चाहे वो तिलावत ना की जाने वाली वही जिसको हदीस मुबारक कहते हैं, मतलू और गैर मतलू ये दोनों वही है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें ये भी वही हैं और कुरान मजीद ये तो वही है ही, सब समझ जानते हैं, समझते हैं इस बात को। तो वही फरमा रहे हैं कि जिक्र से यहाँ पर मुराद कुरान या मुतलक वही, दोनों तरह की वही है मुराद है, और मतलब ये है कि कसम है उन फरिश्तों की जो बजरिए वही हक व बातिल में फर्क और इम्तियाज वाजह कर देते हैं, ठीक है। वही आई, पता चल गया कि क्या हक है क्या बातिल है, जो वाकया इफ्क हम पढ़ रहे हैं सीरत क्लास के अंदर, तो उसमें पता नहीं चल रहा था कि आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा और सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर जो ये तोहमत लगाई या ये जो ये बात की जा रही है ये सच है कि झूठ है, 1 महीने तक वही नहीं आ रही, नहीं पता लग रहा किसी को कि ये सच है कि झूठ है, ठीक है। हत्ता के सूरह नूर की 10 आयतें नाजिल होती हैं और वो क्लियरली बता देती हैं के आयशा सिद्दीक रतान जो है वो बिल्कुल बरी है, सफवान रतान जो है वो बिल्कुल बरी है ना, और हकीकत क्या है, तो वही ने आकर के फर्क जो है वो जाहिर कर दिया, ठीक है, वाजह कर दिया। और कसम है उन फरिश्तों की जो अम्बिया अलैहिस्सलाम पर जिक्र यानी वही और कुरान का इल्का करते हैं, क्योंकि वही आती कैसे थी, फरिश्ते लेकर के आते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऑफ कोर्स, ठीक है, वही लाने वाले फरिश्ते वही हैं। इस तरह किसी सिफत में तावील और खींचतान की जरूरत पेश नहीं आती। अब इसमें कोई जरूरत पेश नहीं है, बहुत आसानी के साथ जो है ये बात एक्सप्लेन और एक्सप्लेनेबल हो गई, ठीक है, कोई खींचतान करने की जरूरत पेश नहीं आई, तावील की जरूरत पेश नहीं आई। किसी को कोई सवाल है या आजिजी बोला चले जा रहा है आपको, कुछ पता नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है भी समझ में कि नहीं आ रहा, नहीं बता रहा, कोई सवाल है तो चैट विंडो के ऊपर हमारे यहाँ पूछने का सिलसिला होता है। चलें, 2-3 मिनट रह गए तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि रहा ये सवाल कि इस तफसीर की बिना पर पहले हवाओं की मुख्तलिफ अकसाम की कसम खाई गई, फिर फरिश्तों की, तो इन दोनों में रब्त और जोड़ क्या है? सो कलाम इलाही की हिकमतों का इहाता तो कोई नहीं कर सकता। देखें, ये तो बता दिया था ना कि कसम और जवाब कसम के अंदर रब्त और जोड़ होना चाहिए, और कसमों में भी आपस में जोड़ होता है। अल्लाह ताला का जो कलाम है ये तो मुनज्जम तरीन कलाम है, इससे ज्यादा मुनज्जम यानी जोड़ रखने वाला और कोई कलाम हो ही नहीं सकता। और अल्लाह ताला के कलाम में बेजोड़ होना ये तो एक बुरी सिफत होती है, किसी चीज किसी बात का बेजोड़ होना, है ना, कि मैंने एक जुमला कहा फिर दूसरा जुमला कहा, एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ कोई रब्त ही नहीं, तो इसको कहते हैं तो बेजोड़ है, क्या कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना। अल्लाह का कलाम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सुनने वाले को समझ में ना आए ये मुमकिन है, क्योंकि भाई उसकी अकल कम है, उसकी समझ कम है, उसका इल्म कम है, इस वजह उसको जो उसको जोड़ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जोड़ तो लाजमी है अल्लाह के कलाम के अंदर, ठीक है। तो फिर अब इसके ऊपर सवाल होता है, इल्मी सवाल है कि भाई क्या जोड़ और रब्त है, तो उसका जवाब हजरत फरमाते हैं कि कलाम इलाही की हिकमतों का इहाता तो कोई नहीं कर सकता, यानी हम 100% तो हमें नहीं पता, हालांकि इतना बड़ा इल्म है मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह कि उनके अलैका के उनके जब हम अहवाल पढ़ते हैं, वाकयात पढ़ते हैं, तो दंग रह जाते हैं कि अल्लाह ताला ने 20वीं सदी के अंदर भी इतने ज्यादा इल्म रखने वाले लोगों को पैदा फरमाया, है ना। पीछे तो बड़े बड़े अकाबरीन और बड़े बड़े एक से एक गुजरे हैं लोग, यानी 1000 साल पहले, 500-600 साल पहले, लेकिन अभी हमारे जमाने में चंद साल पहले जो है वो ऐसे ऐसे इल्म वाले लोग गुजरे हैं, मौजूद हैं, बल्कि अभी भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन फिर भी आजजी क्या है, आजजी का इजहार कि जी कोई इहाता नहीं कर सकता अल्लाह ताला के इल्म का, ठीक है। फिर आगे जो है वो एहतमाली तौर पर फरमाते हैं कि भाई ये मुनासिबत भी हो सकती है कि हवाओं की दोनों कस्में बारिश वाली नफा बख्श और सख्त आंधियां मुजर्रत रसा यानी तकलीफ पहुंचाने वाली, ये सब महसूसात में से हैं जिनको हम अपने फिजिकल 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हवास खमसा से, है ना, देखने की अल्लाह ताला ने हमें एक हिस अता फरमाई है, सूंघने की हिस अता फरमाई है, सुनने की हिस अता फरमाई है, और जो है वो चखने की हिस अता फरमाई है, और छूने की हिस अता फरमाई है। तो इन 5 चीजों से आप जिन चीजों को महसूस कर सकते हैं ना, तो उनको महसूसात कहा जाता है, ठीक है। हर शख्स उनको पहचानता है, हवाएं यानी उनका असर नजर आ रहा होता है, आवाज आ रही होती है, ठीक है, और उनकी कभी स्मेल भी आ रही होती है, तो पहले गौर फिक्र के लिए इंसान के सामने उनको लाया गया, महसूसात को लाया गया, ठीक है। उसके बाद फरिश्तों और वही को पेश किया गया जो महसूस नहीं मगर जरा से गौर फिक्र करने से उनका यकीन हो सकता है, ठीक है। तो ये ना तदरीजन अल्लाह ताला इंसान की सलाहियत के एतबार से उसको पहले आसान चीज बतला रहे हैं और फिर उसके बाद निस्बतन मुश्किल चीज, ठीक है। जब आसान चीज तुम समझ लोगे ना, तो फिर उसके बाद मैं मुश्किल चीज की तरफ तुमको लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो फरिश्तों को समझना हवाओं को समझने से रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। उजरन और नुजरन ये मुल्कियात जिक्रन से मुताल्लिक है, और ये जिक्र और वही अम्बिया अलैहिस्सलाम पर इसलिए नाजिल की जाएगी कि वो अहले हक मोमिनीन के लिए उनकी कोताहियों से माजरत का सबब बने और अहले बातिल कुफार के लिए नज़ीर और अजाब से डराने वाला साबित हो, ठीक है। यहाँ पर हम आज क्लास रोकते हैं क्योंकि वक्त खत्म हो गया, और किसी ने कोई मैसेज भी किया हुआ इधर, उसको देख लेते हैं कि जिस अल्लाह ने जमीन आसमान में और सूरज चांद को मना मुनज़म किया है यकीनन कुरान जो अल्लाह ने इंसान और जिन्नात के लिए हिदायत के लिए भेजा वो बेहतरीन मुनज्जम होगा। बेशक ऐसे ही है, अल्लाह ताला की पूरी मखलूक जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, रब्त में है। तो जो अल्लाह ताला की सिफत है ना, कुरान मजीद ही अल्लाह ताला की सिफत है, तो क्या वो मुनज्जम नहीं होगा? वो तो बदर्जे ऊला मुनज्जम है। ठीक है, अब जैसे मखलूक के अंदर जो 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 नज़म है वो भी एक आम आदमी को तो नजर नहीं आता ना, जो इसमें तहकीक करते हैं, गौर करते हैं, ये आपके क्या कहते हैं रिसर्चर्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनको फिर ये नज़म नजर आ रहा होता है ना कि भाई चूंटी में और मक्खी में और इसके अंदर क्या नज़म है। एक आम आदमी को तो नज़म नजर नहीं आता, इन वाले को नजर आता है, तहकीक करने वाले को नजर आता है। बिल्कुल वही मामला जो है वो कुरान मजीद का भी है। एक आम आदमी को जो है वो नज़म समझ में ही नहीं आएगा कुरान मजीद के, लेकिन जिसने तहकीक करी और इल्म अरबी जुबान का और वही का इल्म हासिल किया, उसको फिर नज़म नजर भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चले हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वक्त लगाने को कबूल फरमाए और हमें इल्म नाफे और अमल नाफे की तौफीक अता फरमाए, अमल साले की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।